बस एक बात पूछनी है आपसे, आखिर आप क्यों अपने पैसे हमें देना चाहते हैं? लोगों की खातिर या मेरी माँ की खातिर?
सारे जहां का दर्द इनके जिगर में जो है।
अच्छा,
फर्ज कर ले मैं इन दोनों लोगों की ही खातिर ये काम करना चाहता हूँ, आप लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो अपने पैसों से मतलब है ना, अपनी माँ की बर्बाद थोड़ी है, तो कम से कम किसी और को ही उनके लिए कुछ कर लेने
मकाना है। सिर्फ इसलिए? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा।
आपकी नजर में ये बातें अहमकाना हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी तरह मौत का मुशाहिदा किया होता तो आप डरते। मैं सिर्फ आपकी वालिदा के बारे में नहीं सोच रहा। अब अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मेरी अपनी कहानी। ये कि मेरे पास अचानक इतनी दौलत कहाँ से आ गई?
हाँ हाँ, जरूर बताइए, यकीनन इंटरेस्टिंग होगी।
चंद महीने पहले तक मैं भी बिल्कुल आप लोगों की तरह ही सोचता था, अलबत्ता आप लोगों जैसा नहीं। आप लोगों ने तो मुझ जैसे को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन मैं इतराफ करता हूँ कि दौलत का हसूल मेरे लिए बहुत अहमियत रखता था और इसकी खातिर मैंने बहुत गलत काम भी किए। इसीलिए मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि मैं आप दोनों से निमट लूंगा, लेकिन उस तजुर्बे के बाद मैं बहुत डर गया। अब मैं चाहता हूँ कि उन चेक्स, रसीदों और ड्राफ्ट को खरीद कर अपने मुश्तबा माल को पाक करूँ। इस तरह एक तीर से तीन निशाने लगेंगे। पहला ये कि आपकी माँ को निजात मिल जाएगी, दूसरे ये कि बाकी लोग आपके शर्त से निजात पालेंगे, तीसरे ये कि यूं मेरा मुश्तमा माल भी पाक हो जाएगा।
इतनी बड़ी रकम आप साथ लाएं?
नहीं, इस बार ऐसा नहीं चलेगा। अब मैं आप दोनों के धोखे में नहीं आऊं। इधर आप वो तमाम चेक्स और रसीदें मेरे हवाले करेंगे, उधर मैं वो तमाम रकम आपके हवाले कर दूंगा। इस तरह हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा।
और सूद का क्या होगा? हमें रकम सूद के साथ चाहिए।
सूद की रकम? वो सब भी आपको दूंगा, बल्कि आपके मुंह पर मारूंगा। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अब तक कहाँ थे, क्या कर रहे हो?
मेरी प्यारी माँ, अब तो आपको मेरे लिए परेशान नहीं होना चाहिए, मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं मामा।
तो मैंने कब कहा है कि तुम बच्चे हो? बेटा मैं माँ हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। देखो तो सुबह होने को आई है। बहनोश ने फोन किया था
तो
उसने बताया है कि तुमने मिसेस हिकमत के घर चोरी की नीयत से जाने का कोई मंसूबा बनाया था। बखुदा जब तुम बच्चे थे ना, इतनी परेशानी न थी मुझे।
ऐसी बोला उसने मामा, फजूल बकवास की है उसने।
आखिर तुम और चोरी, मुझे भी यही हैरानी थी, लेकिन आखिर उस लड़की को क्या जरूरत पड़ी थी मुझसे ऐसा झूठ बोलने की?
नहीं, झूठ नहीं बोला, इरादा तो यही कुछ करने का था। फिर मैंने मामे मस्जिद और अर्जुमन साहिब वगैरह से बात की तो उन्होंने मुझे एक और बेहतर रास्ता बता दिया।
ये तो बहुत अच्छा है, खुदा उन्हें जजाए खैर दे। तो अब तक कहाँ थे वो?
होशंग हिकमत के घर पर, लेकिन चोरी के लिए नहीं। मैंने जाकर उससे कहा है कि वो तमाम रसीदें और चेक्स उनसे यकमुश खरीदना चाहता हूँ।
क्या होश में हो?
क्यों, अब इसमें क्या बुराई है? 30-40 करोड़ से ज्यादा तो नहीं होंगे ना?
तुम्हारे पास इतनी रकम है?
मेरी माँ, शुमाल वाला घर है ना, 30 करोड़ रुपए मालियत का तो होगा, कुछ पैसा लोगों से लेना है, अपनी गाड़ी है, और अगर कम पड़े तो कर्जा ले लूंगा।
और फिर क्या करोगे?
कुछ भी नहीं, सूद तो मैं माफ कर दूंगा, रही असली रकम तो वो किस्तों में वसूल करता रहूंगा।
खैर ये बताओ, खाना खाया?
नहीं भाई, कैसा खाना, मैं उस हिकमत के घर गया हुआ था और उसके यहाँ मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ की हर चीज उन्हीं की तरह है, हराम है।
आज मैंने 2 मरतबा परवाना के घर फोन किया, वो अभी लौटे नहीं है।
प्यारी माँ, खुदारा अब तो उन्हें भूल जाएं, क्यों खुद को हल्का करती हैं? अब मुझे उसका नाम सुनना तक गवारा नहीं।
अच्छा ठीक है, चलो अंदर चले।
नहीं, कल मुझे कोई खास काम नहीं है, बस मिसेस सलीम ज़ादा और उनके बेटे शहरयार के पास हॉस्पिटल जाना है।
ठीक है, तो मैं तुम्हें सुबह फोन करूंगा ताकि अगर हो सका तो साथ ही हॉस्पिटल चलेंगे।
जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
तुम पर काफी यकीन आ गया है उसे। वाकई हैरान कुन बात है। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि तुमने अपने उस चचाजात कामरान को, जो इतना जोशीला, जज्बाती और अर्थधर्म था, एक प्रसुकुन शख्स में कैसे तब्दील कर दिया। देखा तुमने इल्हाम कामरान कितना बदल गया है। अपने तमाम कामों को छोड़कर अरबाओं के उमूर की अंजामदेही में जुट गया है।
बाबा, आपको मेरी मदद करनी होगी और अरबाओं के इन उमूर में मेरा साथ देना होगा।
वो कैसे, मुझे क्या करना होगा?
वो दरअसल मुझे अपने उस अपार्टमेंट की चाबी चाहिए जो आपने मम्मा के भिजवाए हुए पैसों से खरीदा था।
अपार्टमेंट तुम्हें किस लिए चाहिए? क्या तुम्हें बैरून मुल्क नहीं जाना या फिर इरादा बदल गया?
नहीं, मैंने कोई इरादा नहीं बदला।
हाँ, तो फिर यकीनन वहाँ अरबाओं का ठिकाना बनाना चाहती हो।
बाबा, मैं तो उस अपार्टमेंट को सलीम ज़ादा और उसकी माँ को किराए पे देना चाहती हूँ।
वो किस लिए?
अब इस पर भी आपको कोई एतराज है क्या?
वो अपार्टमेंट इस्तेमाल में तो है नहीं, कई सालों से खाली पड़ा है। करने दे उसे जो करना चाहती है।
आखिर मुझे मालूम होना चाहिए वो करना क्या चाहती है।
उसकी अपनी मलकियत है, क्या आपने उसके लिए नहीं खरीदा था? फिर जैसे वो चाहे उसे इस्तेमाल करने दें।
बेनोश।
महमूद, बस करें, इतना भी उस बच्ची के पीछे मत पड़ जाएं।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्रांति साहब।
पैसों का इंतजाम कब तक हो जाएगा?
जब आप कहें।
अगर मुमकिन हो तो जरा जल्दी इंतजाम कर ले, इससे पहले कि होशंग का इरादा बदल जाए। अलबत्ता मैं आपको वो तमाम रसीदें देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि वो रकम आप खुद मेरे हवाले करें तो।
मैंने अर्ज किया ना कि जैसी आपकी मर्जी,
बस आप मुझे इतना टाइम दीजिए कि मैं ऑफिस पहुँच जाऊँ।
वहाँ जाकर मैं आपसे राबता करता हूँ और फिर बताऊँगा कि कब तशरीफ लाए, वही हम मामला तय कर लेंगे। खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
कौन था?
वीना थी।
वीना, मैं जा रहा हूँ, कोई चीज तो बाहर से नहीं मंगवानी है?
नहीं,
मैं दोपहर खाने पर नहीं आऊंगा, लेकिन अगर चाहो तो रात में कहीं बाहर चलकर डिनर करते हैं।
नहीं, मुझे कुछ काम है, मुझे जरा वीना के साथ शॉपिंग करनी थी।
ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, काम हो तो फोन कर लेना।
खुदा हाफिज।
मैंने एक बड़ा ही माहिर चोर ढूंढ लिया है, उसके काम का तो जवाब नहीं। इस तरीके से चोरी करता है कि साहिब खानों को भी पता नहीं चलता। पुलिस तो दूर की बात।
अब इसकी जरूरत नहीं।
जरूरत नहीं, क्या मतलब? मैंने इतनी सख्त मेहनत की इस बंदे को ढूंढने की खातिर।
मैंने सोच लिया है, वो तमाम रसीदें खरीद रहा हूँ।
किन पैसों से? कुछ अंदाजा है उन रसीदों की कितनी रकम होगी?
हाँ, यही कोई 40 करोड़।
तो इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से होगा?
कंपनी के अकाउंट से।
हमारे अकाउंट में इतनी रकम तो है नहीं, और वैसे भी अकाउंट में मौजूद सारी रकम सिर्फ तुम्हारी तो नहीं है ना, या है?
हाँ, नहीं है।
तो यकीनन तुम अपने शेयर्स बेचकर कंपनी को खैराबाद कहना
चाहते हो। नहीं मेरी जान, मैं ये रकम उधार करके रसीदें खरीदना चाहता हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा करके कर्जदारों से लेता रहूंगा, अलबत्ता बिना किसी मुनाफे और सूद के।
तुम कंपनी के सारे माल को मुफ्त में उड़ाना चाहते हो, वो भी एक फजूल से काम के लिए जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आगा जान, इन कर्जदारों के पास इतने पैसे होते तो वो होशांग और शिवा को देकर जेल जाने से ना बच जाते।
जनाब मसूद साहब, मैं आपका मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा, आखिर आपको किस बात की फिक्र?
मुझे अपनी फिक्र है सरोज साहब, मैं नहीं चाहता कि मैं वापस उसी जगह पहुंच जाऊं जहां 7 साल पहले सफर शुरू किया था। काश मैंने बाबा की दुकान ना बेची होती, तुम्हारे साथ शिराकत दारी ना की होती।
देखो मेरे दोस्त, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं खुद को और तुमको गुनाहों के इस दलदल से जिसमें हम गले तक धस चुके हैं बाहर निकालूं। तुम समझते क्यों नहीं, हम नजर जानवर की तरह अपनी निजासत में लिथड़े हुए बस हाथ पांव मारे जा रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि हमारा अंजाम भी होशों को शिवा की तरह हो।
गुनाहों की दलदल में तुम धसे हो, मुझे इससे क्या लेना देना। अब तुम्हें हक नहीं पहुंचता कि तुम कंपनी के एक पैसे को भी हाथ लगाओ। ये कोई खैराती इदारा नहीं है। हमने 8 करोड़ टैक्स किस खुशी में दिया था? खैराती इदारे पर तो कोई टैक्स नहीं लगता। कितना समझाया कि टैक्स मत अदा करो, मगर ना, तुमने कहा टैक्स तो देना ही होगा और फिर जाकर 1 करोड़ गुर्दा खरीदने के लिए दे देते हो। अब नहीं होगा, अब इजाजत नहीं कि कंपनी को मजीद नुकसान पहुंचाओ।
अच्छा, ऐसी बात है तो फिर सुनो मसूद राजी साहब, इस कंपनी की शराकतदारी में ज्यादा ऐसा मेरा है। इस कंपनी का ओनर और कर्ता धरता मैं हूँ। तमाम चेक्स पर मेरे साइन चलते हैं, लिहाजा ब्रोकर दिखाओ, देखता हूँ क्या कर लोगे। वैसे भी इस कंपनी के लिए अब तक तुमसे कहीं ज्यादा भाग दौड़ और कुत्ता मारी मैंने।
चलो चलो जाओ यार।
मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा।
किस बात का?
कि तुम इतनी मुस्तकिल मिजाजी से इन अमूर की अंजामदही के लिए मेरा साथ दे रहे हो।
मैं सिर्फ खुद को आजमाना चाह रहा हूँ, इसका दूसरों से इस काम से कोई ताल्लुक नहीं है।
क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं।
मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कहाँ तक सब्र कर सकता हूँ, कहाँ तक अपना सब कुछ दांव पे लगा सकता हूँ, कहाँ तक इन तमाम चीजों से जिन्हें हासिल करने में मैंने जहमतें उठाई तुम्हारी खातिर इनसे 10 बरदार हो सकता हूँ।
ये क्या है बेटी?
चाबी है।
मुझे मालूम है कि ये चाबी है, मेरे पास तो कोई चाबी नहीं थी।
ये मेरे अपार्टमेंट की चाबी है, इसे आप अपने पास रखें ताकि जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो तो वहाँ चले जाएं।
नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया, इसे तुम रख लो।
लेकिन क्यों? ये अपार्टमेंट तो सालों से खाली है। अब मैं इसे आपको किराए पे देना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही सलीम ज़ादा को जॉब मिल जाएगी मैं आपसे किराया ले लूंगी। प्लीज आंटी, इनकार मत कीजिएगा।
जीती रहो बेटा, मैंने तुम्हें बहुत जहमतें दी है, मुझे माफ कर देना।
खुदा करे कि मैं इस एहसान का बदला उतार सकूं।
मैंने तो कोई एहसान नहीं किया है।
मेरा जी चाहता है कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और आपकी और क्रांति साहब की मदद करूं। तुम दोनों बहुत अकेले हो, हमने वादा किया था कि मिलकर रूहों की निजात का सामान करेंगे।
फिलहाल आपके लिए सबसे अहम है कि आप आराम करें, और मैं अकेली नहीं हूँ, ये कामरान यानी मेरे मंगेतर और चाचा साथ भाई ये भी मेरी मदद करते हैं।
ये आपके वही मंगेतर है ना जिनकी वजह से आपने खुदकुशी?
जी हम कंपनी के सारे शेयर्स बेचना चाहते हैं। जी नहीं, अभी कीमत लगानी है, मेरा ख्याल है तकरीबन 30 करोड़ के तो होंगे। इसके अलावा एक फैक्ट्री और भी है जो जल्दी हमारी जाती मिल्कियत होने वाली है। अगर ऐसा हो जाए तो यही कोई है अरबों या खरबों में बात जाएगी। जी आपको इससे क्या लेना देना, मैं शेयर्स को खुद मुंतकिल करूंगा। आप इसकी फिक्र छोड़िए, बिल्कुल आपको तो अपने कमीशन के 1.5 करोड़ रुपयों से मतलब होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो 20% सही। अब खुश सुने, मैं जरा जल्दी में हूं लिहाजा ये काम जरा जल्दी करना होगा। जी जनाब। अच्छा फिर मिलते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। ये काम तो हुआ।
Thank you.
पूरे हैं।
अब मुझे रसीदें और चेक चाहिए। तय पाया था कि कोई घपला नहीं होगा।
नहीं है
तो फिर वक्त जाया मत कीजिए, मुझे वो तमाम चेक्स और रसीदें दे दीजिए।
क्या हुआ? क्या पूरे नहीं हैं? पूरे हैं, चाहे तो हिसाब लगा लें, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया।
जानता हूँ।
तो फिर
मैं ये सोच रहा हूँ कि आप ये पैसे हजम कैसे करेंगी। अलबत्ता आपकी थी जिसने उस बेचारी बूढ़ी और लाचार औरत को मार डाला, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप ये बातें नहीं समझेंगी, लेकिन एक बात याद रखें, बिलाखिर एक दिन उस लाचार औरत की आह आपको अपनी लपेट में लेगी।
मुझे और भी काम है, मेरे पास इन फजूल बातों को सुनने का टाइम नहीं है, वरना ये तमाम चेक्स और रसीदें मुझे वापस कर दें।
वो बदबख्त बूढ़ी औरत जितनी भी गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन उसका खून रायगा नहीं जाएगा।
चंद रुपयों की खातिर बेचारे का फ्रिज उठाकर ले गए। हाँ
मैडम, करामती साहब हैं।
अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। जी नहीं, आप?
मुझे उनसे कोई काम नहीं, इंजीनियर साहब को उनसे मिलना है।
इंजीनियर साहब?
जी, इंजीनियर जावेद।
राजी साहब उनके बिजनेस पार्टनर और असिस्टेंट। अगर आप
तशरीफ ले आए जनाब। अच्छा वो कहाँ है बिजनेस पार्टनर साहब?
राजी साहब कोई जावेद साहब आए हैं, करामती साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो इस वक्त नहीं है इसलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। जी तशरीफ ले जाइए।
तशरीफ लाएं।
डोरबेल भी है नहीं।
कौन है?
माफ कीजिएगा मोहतरमा, अगर मुमकिन हो तो जरा एक मिनट के लिए दरवाजे पर आ जाइए।
आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा, आप वही साहब नहीं है जिन्हें मैंने उस रात मिसेज हिकमत के घर के दरवाजे पर देखा था?
जी जी ठीक पहचाना।
जी फरमाइए।
मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आपके शौहर का नाम रहमती है ना?
जी जी क्यों क्या हुआ?
ये वो तमाम चेक्स और रसीदें हैं जो आपके शौहर ने मिसेज हिकमत को दिए थे। उम्मीद है कि हफ्ते के आखिर तक आपके शौहर आजाद होकर अपने घर और बीवी बच्चों के पास पहुंच जाएंगे।
लेकिन कैसे?
ये अहम नहीं, अहम ये है कि बच्चों का बाप उनके पास हो। मैं खुद एक बच्चे का बाप हूँ मोहतरमा, मैं समझ सकता हूँ।
लेकिन ये तो उन तमाम कर्जों की रसीद है, कोई जमानत कोई और चीज?
मैंने तमाम कर्जदारों की तमाम रसीदों और चेक्स वगैरह खरीद लिए हैं। इंशाल्लाह जब आपके शौहर की माली हालात ठीक हो जाएं तो किस्तों में वो इन पैसों की अदायगी कर सकते हैं।
खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपकी हर दिली आरजू को पूरा करे। वाकई शुक्रिया।
शुक्रिया की कोई बात नहीं खातून, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। अब इजाजत दीजिए।
माफ कीजिएगा साहब, आपका नाम क्या नाम बताया था आपने?
जाने दें, बस एक बंदा है खुदा।
लाखिर मुझे आपका नाम पता होना चाहिए ताकि हम आपका कर्ज अदा कर सकें।
मेरा नंबर इस कार्ड पर लिखा है, जब चाहे रابطہ कर सकते हैं। इजाजत दीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया।
खुदा हाफ।
शुक्रिया साहब, खुदा आपको सलामत रखे।
पढ़ो इसे।
2 करोड़ रुपए यानी 20 मिलियन रुपीज ओनली।
इसे रखो, तुम्हारी खैर नहीं अगर तुमने झूठ बोला होगा। अच्छी बात है, अब जबकि तुम्हारा कहना है कि वो नक्शे करामती के पास हैं, तो कोई बात नहीं, ये चेक उसे दे देना और कहना वो खुद मेरे पास वो नक्शे लेकर आए, चूंकि तू कॉपी करवाए बगैर सिर्फ वही ये चेक बयाना है, बाकी की रकम जब वो नक्शे लेकर आएगा तो उसे दे दी जाएगी। अगर नरमी की जबान उसे समझ नहीं आती तो मुझे दूसरा रास्ता भी इख्तियार करना आता है, क्योंकि अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मेरी तरफ से उसे कहना मैं कोई नया खिलाड़ी नहीं हूँ, तुम जैसे सैकड़ों जिद्दी और हठधर्म बच्चों को सीधा कर चुका हूँ, समझ गए? मैंने कहा समझ गए?
जी जी जनाब, समझ गया।
समझ गए।
तो कितना सूद दिया है?
पता नहीं, मेरा सारा हिसाब मुझसे गड़बड़ हो गया, लेकिन महाना 50,000 से ज्यादा बनते हैं। अब 2 साल होने को आए हैं, लेकिन मैं असली रकम अभी तक अदा नहीं कर सका हूँ।
यानी आप अब तक असल रकम के बराबर सूद अदा कर चुके हैं, फिर भी असल रकम अपनी जगह बरकरार है, यानी तकरीबन साल के 65 लाख रुपए आप दे चुके हैं।
जी जानता हूँ, ये सब मेरी बीवी की गलती है, अगर उसने इतना इसरार न किया था तो आज मेरी हालत इससे बदरजा बेहतर होती। पौश इलाके में घर और कीमती साजो सामान जिंदगी, आखिर मुझे मजबूर कर दिया कि मैं किसी से सूद पर कर्ज लूं, वो भी उस जालिम औरत से, और अब उसके बेटे के चुंगल में फंस गया हूँ। बस 2-1 रोज में वो मुझे पकड़वा देंगे।
माफ कीजिएगा, एक जाती सवाल है, वैसे आप करते क्या हैं?
अब मैं टैक्सी चलाता हूँ करामती साहब, लेकिन जो कुछ आमदनी होती है वो सूद की नजर हो जाती
है। अच्छा, खैर हम एक काम कर सकते हैं, आज के बाद आप बस 5,000 रुपया मुझे महाना अदा कर दीजिएगा और मैं आपकी असल रकम में से कम कर लिया करूंगा। रहा सूद और मुनाफा वगैरह, तो उसकी तरफ से अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, ठीक है?
ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ क्रांति साहब, कि आपने उस घटिया शख्स को राजी कैसे कर लिया इस बात पर? वो लालची इंसान आसानी से मानने वाला नहीं।
मैंने उसे राजी नहीं किया, मैंने वो तमाम रसीदें और रहनामे वगैरह खरीदी हैं, और अब आप लोगों के तमाम चेक्स और दीगर कागजात मेरे पास।
खुदा आपको और आपके वालदेन को जजाए खैर दे के हमें उस बेरहम खातून और उसके लालची घटिया बेटे के शर से निजात दिलवाए।
लेकिन एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा, आपका गुनाह भी उनसे कुछ कम नहीं है, जो सूद पर पैसे लेता है वो भी गुनाहगार होता है।
जी जानता हूँ, मैं मजबूर था और मैं कर भी क्या सकता था।
बहरहाल आपसे मिलकर खुशी हुई, शुक्रिया।
आपकी बड़ी
जहमत की माफी।
अरे जहमत कैसी, खुदा हाफिज।
हाँ जी मामा, ये आप है ना? कैसी हैं आप?
हाँ मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपनी मामा को एक फोन भी नहीं कर सकती थी।
क्यों नहीं, अभी मैंने 2 दिन पहले ही फोन किया था, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया, ना ही आंसरिंग मशीन पर गया जो मैं कोई मैसेज ही दे देती।
हाँ, इसलिए कि मैं अमेरिका में नहीं हूँ, तुर्की आ गई हूँ और 1-2 घंटे में तेहरान पहुँच जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी प्यारी बेटी के बहुत करीब हूँ।
सच कह रही है? हाँ
हाँ, तुम्हें खुशी नहीं हुई?
क्यों नहीं, बहुत ज्यादा।
तो फिर?
बस जरा हैरान हो रही थी, शॉक लगा है मुझे।
मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया था, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रही थी। मैं फ्लाइट नंबर 234 से आ रही हूँ, 3 बजे तक तेहरान पहुँच जाऊंगी, फिर मिलते हैं मेरी जान, फिलहाल खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
क्या हुआ, खैरियत तो है?
मुझे एयरपोर्ट जाना है।
सब ठीक तो है? क्या कोई मेहमान आ रहा है हमारे यहाँ?
जी कुछ मेहमान आ रहे हैं।
कौन आ रहा है?
मामा आ रही हैं, तो मुझे उन्हें लेने जाना होगा।
तुम आज रात कहीं नहीं जाओगी, समझी?
आखिर किस लिए? मुझे उन्हें लेने जाना ही होगा, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी।
कह दिया ना, किसी ने उसे दावत देकर नहीं बुलाया है, तुम उसे लेने जाओ।
लेकिन वो मेरी माँ है, मुझे उनसे मिलने का पूरा हक है।
तुम्हें उससे मिलने का हक है, लेकिन उसे लेने जाने की इजाजत नहीं है। वो खुद होटल चली जाएगी। जब वो जा रही थी तो कोई उसे छोड़ने नहीं गया था। जो अब वो आ रही है तो उसके इस्तेमाल के लिए जाएगा।
लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिर आप मुझे जाने से क्यों रोक रहे हैं?
बहनोज ठीक कह रही है, उसका हक बनता है कि वो अपनी माँ से मिले।
आप प्लीज मदाखलत मत करें। समझ नहीं आता कि तुम किस किस्म की लड़की हो, अपना अपार्टमेंट मिसेस सलीमजादा को रहने के लिए दे रही हो। कभी कहती हो कि मिसेस सलीमजादा के बेटे ने अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक किया, वैसा सलूक किया। उस लड़के का अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करने के बारे में हमें बताती हो, लेकिन खुद उसकी रियायत नहीं करती। बदकिस्मती से मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम देख रही हो कि ऐसे बाप के मुकाबले खड़ी है, नमाज शब पढ़ती है, मरीजों की मदद करती है, मिसेस सलीमजादा की बेटी बनकर उनकी दिलजोई करती है, और जब हमसे वास्ता पड़ता है तो जैसे दुश्मन से वास्ता पड़ गया।
मुझे माफ करें। तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? पैसे गिन तो लिए, देख लिया ना पूरे हैं।
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? असल बात ये है, क्यों खुद से ये कदम उठाया?
मैंने सोचा अचानक तुम्हें सरप्राइज दूंगी, और क्या, आखिर मैं इतने सारे पैसों का क्या करूंगी। हाँ अच्छा लो, अब ये चाय पियो, फिर बैठकर हम अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में सोचते हैं। अब तो हम मालदार हो गए हैं ना, ठीक कह रही हूँ ना मैं?
हाँ।
सुनो, मेरा दिल चाहता है कि हम दुबई में शानदार सी कोठी खरीदें, तुम भी वहीं अपना बिजनेस कर लेना। अच्छा ये लो चाय पी लो, क्या सोचने लगे?
मैं चाहता हूँ उस रोज के बारे में बताओ।
किस रोज के बारे में?
जब मेरी माँ सीढ़ियों से गिरी थी, तुम्हारी दोस्त सुमेरा बता रही थी कि तुम उसके साथ नहीं थी, बल्कि तुम यहाँ मौजूद थी मेरी माँ के घर में।
हाँ हाँ, मैं उस दिन यहाँ आई थी लेकिन जल्दी चली गई थी। मेरा यकीन करो, ये सच है।
फिर
उस दिन मैं तुम्हारी माँ से नई गाड़ी खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए उधार लेने जरूर आई थी। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ 20 लाख सूद के साथ वापस करने होंगे। मुझे गुस्सा आया और मैं दरवाजा पटक कर वापस चली गई।
लेकिन जाने से पहले उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया।
देखो मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया था, लेकिन अब तुम जो चाहो सोचो।
ये क्या कर रही हो, ये क्यों उठा रही हो?
मैं इन्हें किसी महफूज मकाम पे रखना चाहती हूँ।
खबरदार, अगर मेरी इजाजत के बगैर तुमने इन्हें छुआ भी तो रख दो यहीं पर इन्हें।
सुनो, जो मेरा जी चाहेगा मैं वही करूँगी। तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता मुझसे इस तरह बात करने का, समझे?
ना समझ कातिल औरत, तुम ये पैसा लेकर फरार होना चाहती थी, लेकिन अफसोस किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया और ऐन मौके पर मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ दिया। और मेरे पहुंचते ही तुमने फौरन अपना मंसूबा बदल कर बात बदल दी।
हाँ सुन लो, ये सारी दौलत मैं अपने साथ दुबई ले जाना चाहती हूँ।
क्या मुझे नहीं पता तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो जिसने तुमसे ये बकवास की कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा है? हाँ, मैं उसी सुमेरा की बात कर रही हूँ जिसने तुमसे ये बकवास की है ना?
उसने मुझे बताया कि तुम उसके साथ नहीं थी, बल्कि उसने तुम्हें यहाँ ड्रॉप किया
था। इन पैसों के लिए मैं किसी की भी जान ले सकती हूँ, और हाँ, तुम्हारी माँ को भी मैंने ही मारा है।
कातिल, खूनी, दफा हो जाओ इधर। तो मुझे
क्या हुआ? उठो, गुस्सा आ रहा है, मारो मुझे। हाँ, क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं? साइनाइड बहुत जल्दी असर करता है, लेकिन तुम बड़े सख्त जान हो। जब तक जिंदा हो, जब तक के तुम्हारी लाश से बदबू उठेगी, मैं ईरान से जा चुकी हूँ।
इधर दो मुझे।
एक टैक्सी चाहिए। एयरपोर्ट के लिए। जी, जरा जल्दी। तुम अब तक जिंदा हो, मरे नहीं।